सागर मुनि
महाराज।
उपयोगों का कथन समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि विदाउट उपयोग को समझे हम गुणस्थानों की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। गुणस्थान 14 होते हैं, इनको चढ़ना है, चढ़ करके आत्मा को सम्यक तो गुण धारण कराना है। श्रद्धा गुण धारण कराना है, ज्ञान गुण धारण कराना है, चारित्र गुण धारण कराना है। ये धारण कौन कराएगा? सम्यक दर्शन कराएगा या चारित्र कराएगा या ज्ञानोपयोग ही कराएगा? क्योंकि सम्यक दर्शन को भी जन्म देने वाला ज्ञान ही है और चारित्र को भी जन्म देने वाला ज्ञान है, परंतु ज्ञान ज्ञान ही रहता है, अन्य गुणों की उत्पत्ति में सहयोग भले ही देता है पर ज्ञान ज्ञान ही रहता है और उसका उपयोग उपयोग ही रहता है। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ये दोनों मिल करके संसारी जीव को संसार में से मुक्त करने के लिए, वो स्वयं संसारी है, ज्ञान ज्ञानोपयोग अपने संसार को नष्ट करके वह परमार्थ सुख का दाता बन सकता है। संसार दुख का दाता भी ज्ञानोपयोग है तो परमार्थ सुख का दाता भी ज्ञानोपयोग ही है। उपयोग को संभालना ये बहुत टेढ़ी खीर है। उपयोग को संभालने की कैपेसिटी भव्य जीवात्मा में ही होती है। उपयोग को कौन संभाल सकता है? भव्यात्मा ही संभाल सकता है, अभव्य उपयोग को संभाल नहीं सकेगा। अभव्य उपयोग सहित है, उपयोगो लक्षणम जीवस्य, जीव का लक्षण उपयोग होने से, उपयोग तो अभव्य जीव के भीतर भी अनादिकाल से था, है और भविष्य में भी रहेगा, लेकिन उसका परिवर्तन संभव नहीं है। ज्ञानोपयोग अनादि है, लेकिन ज्ञानोपयोग जो अशुभ के रूप में है, उस अशुभ पने को हटा करके शुभोपयोग के रूप में कन्वर्ट करे, ये शक्ति अभव्य जीवात्मा में नहीं है। क्योंकि अशुभोपयोग को शुभोपयोग बनाने के लिए तीन कर्म हमारे लिए बाधक है। मिथ्यात्व बाधक है, अनंतानुबंधी बाधक है, और सम्यक मिथ्यात्व एक प्रकृति है जो दर्शन मोहिनी तृतीय गुण स्थान में उदय को प्राप्त होता है, वह बाधक है। इस प्रकार ये तीन कर्म बाधक हैं, और इनका विजेता कौन सा जीव हो सकता है? भव्य हो सकता है क्या अभव्य? भव्य जीव ही हो सकता है। परंतु यह भी साथ साथ हम ध्यान में रख करके चले कि प्रथम गुणस्थान में रहने वाला वह अभव्य जीव उपयोग को तो परिवर्तन नहीं कर सकता, पर योग का परिवर्तन कर सकता है या नहीं? मन, वचन, काय उसके पास भी है, इसको परिवर्तन का मतलब अशुभ से शुभ में और शुभ से अशुभ में वह लगाता है कि नहीं? अवश्य लगाता है। और उस अभव्य जीव की लेशा जो कषाय के मंदोदय के कारण शुभ लेशा बनती है और तीव्रोदय के कारण कभी अशुभ लेशा बनती है, तो लेशा को मंद, लेशा को शुभ और अशुभ ये बनाना भी अभव्य को संभव है क्या नहीं? शुभ लेशा होना, अशुभ लेशा होना अभव्य जीव को संभव है क्या नहीं? संभव है। तो लेशा योग के परिवर्तन में सहयोग जरूर दे देता है। जब हमारी लेशा शुभ रहेगी तो हम अपने योग को शुभ में रख सकते, और लेशा अशुभ रहेगी तो हम अपने योग को अशुभ में ले जा सकते हैं। विषय कषायों के प्रति रागादि भाव होना, ये तीव्र कषाय है या मंद है, शुभ लेशा है या अशुभ लेशा है? अशुभ लेशा है। हाँ? समझ में आ रहा है? आएगा आएगा, बहुत सारी गहराइयां खुलेंगी, धीरे धीरे खुल जाएगा और सब विषय क्लियर होने वाला है। अभव्य जीव की ही हम पहले चर्चा करते हैं कि वह जीव उपयोग से और योग से किस प्रकार होता है। उपयोग तो है, ज्ञानोपयोग किसमें नहीं है? भव्य जीव में भी है, अभव्य जीव में भी है, लेकिन प्रथम गुण स्थान में रहते हुए उस ज्ञानोपयोग को हम क्या कहेंगे? प्रथम गुण स्थान में रहने वाले जीव के उस ज्ञानोपयोग को अशुभोपयोग कहेंगे, क्योंकि उस गुण स्थान में अशुभ बनाने वाले कर्म का उदय विद्यमान है। वहां मिथ्यात्व का उदय विद्यमान है, वहां अनंतानुबंधी का उदय विद्यमान है, इसलिए ज्ञान का जीव का उपयोग जो ज्ञानोपयोग है वह अशुभोपयोग है, वह अशुभोपयोग है, ठीक है ना? एक एक स्टेप ध्यान में रखते हुए जाना है। तो आगे जाकर के कंफ्यूजन नहीं करेगा ये, क्योंकि ये योग और उपयोग वाला मामला बहुत उलझा हुआ है, इस उलझे हुए मामले को सुलझाना है। अभव्य जीव का उपयोग अशुभोपयोग, अभव्य जीव का वही ज्ञानोपयोग किस रूप में है, अशुभोपयोग रूप में। वह ज्ञानोपयोग शुभ पर्याय को धारण कर सकेगा क्या अभव्य जीव का? अभव्य जीव का वह ज्ञानोपयोग अशुभोपयोग को हटाकर शुभोपयोग को धारण कर सकेगा क्या? एकाग्रता से सुनने को इसलिए हम बता रहे हैं, सिद्धांत के विषयों को एकाग्रता से सुनेंगे नहीं तो हम जितना पूछते हैं उसका उल्टा ही उत्तर मिलेगा। ज्ञानोपयोग सबके पास है, मैं क्या बता रहा हूं ध्यान दो पहले। ज्ञानोपयोग आत्मा का स्वभाव है, जीवस्य लक्षणम उपयोग, और उपयोग दो प्रकार का है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग की यहां चर्चा है। यह ज्ञानोपयोग अशुभ भी बन सकता है, शुभ भी बन सकता है, शुद्ध भी बन सकता है। अशुभ बनेगा तो कर्म के उदय से, शुभ भी बनेगा तो कर्म के उदय से, और शुद्ध भी बनेगा तो कर्म के उदय से। कर्म सापेक्ष उपयोग का कथन है, केवल भावों के शुभ होने से उपयोग शुभ होता है ऐसा कभी भी नहीं लगाना। हमारे भाव शुभ हैं इसलिए उपयोग भी शुभ हो गया, तो भाव शुभ तो योग से संबंध रखता है। शुभ भाव अशुभ भाव ये दोनों भाव योग से संबंधित हैं। हमारा योग मन वचन काय की प्रवृत्ति यह सांसारिक विषय कषायों में जब नहीं रहता और धर्म में रहता है तो इस समय कषाय भी मंद होती है, वहां जाने से तीव्र होती थी, अब यहां कषाय भी मंद रहती है और प्रवृत्ति जो है सांसारिक विषय कषाय नहीं है, इसलिए मंद कषाय के साथ भाव भी शुभ हो गए और हमारा अनुष्ठान भी शुभ अनुष्ठान है, शुभ क्रिया है। क्योंकि मंदिर की क्रियाओं को अशुभ कहोगे कि शुभ कहोगे, और संसार की क्रियाओं को अशुभ कहेंगे। बहुत एकाग्रता से सुनना है इस आज के प्रवचन को, उबना नहीं, क्योंकि आत्मा की बात आत्मा को जब समझ में आती है तो आत्मा का बड़ा लाभ होता है आत्मा को, तो आत्मा अपने आप मोक्ष मार्ग पर आ जाता है। लेशा शुभ होने से भाव शुभ होना संभव है क्या? नहीं संभव है। कषाय मंद होना संभव है क्या? नहीं संभव है। ये तीनों संभव है, कषाय मंद हो गई, लेशा शुभ हो गया। लेशा शुभ होने के कारण से व्यक्ति में जो विचार निरंतर जो परिणाम आत्मा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो भी शुभ हो गए। लेशा शुभ है, भाव शुभ है, पर उपयोग कैसा है? उपयोग कैसा है? उपयोग को शुभ कह नहीं सकते, किस कारण से कह नहीं सकते? नहीं, दिमाग में नहीं जा रहा है अभी, और ये नहीं जाएगा तो आगे का कुछ नहीं जाएगा। उपयोग के ऊपर क्या प्रभाव है कि वो शुभ नहीं बन पा रहा है? मिथ्यात्व कर्म का उदय, और किसका उदय? अनंतानुबंधी का उदय, और तीसरा गुणस्थान हो तो किसका उदय? सम्यक मिथ्यात्व का उदय, वहां मिश्र परिणाम रहेंगे। उपयोग को अशुभ शुभ और शुद्ध जो कहा है ये धर्म की अपेक्षा से कहा है, और भावों को लेशा को शुभ और अशुभ जो कहा है वो कषाय के आधार से कहा है। कषाय के मंदोदय होने से उदय का अभाव नहीं, मंदोदय। कषाय का मंदोदय होने से शुभ लेशा हो गई, शुभ भाव हो गए, तो हमारे मन, वचन और काय ये तीनों शुभ है। ये क्या अशुभोपयोग के साथ नहीं हो सकता? अशुभोपयोग के काल में ये हो सकता है, परंतु ये योग शुभ हो गए इसका अर्थ उपयोग भी बदल गया क्या? उपयोग कैसा रहेगा फिर? शुभ रहेगा क्या अशुभ? अशुभ रहेगा। किस कारण से अशुभ रहेगा? हाँ, प्रथम गुणस्थान में है जीव, मिथ्यात्व कर्म का उदय है, अनंतानुबंधी का उदय है। तो ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्म क्या सम्यक्तु धर्म को उत्पन्न होने देते हैं? नहीं है, इसलिए इसको अशुभ कहा है। कषाय की तीव्रता या मंदता के कारण से शुभ नहीं कहा है अशुभोपयोग को। अशुभोपयोग को अशुभ इसलिए कहा है, यहां पर शुभ जिसका नाम है सम्यक दर्शन वो नहीं है। व्यवहार सम्यक दर्शन शुभ है और निश्चय सम्यक दर्शन शुद्ध है। निश्चय सम्यक दर्शन शुद्ध है और व्यवहार सम्यक दर्शन शुभ है। शुभ क्यों है? प्रशस्त राग होने से इसको शुभ कहा। तो धर्म दो प्रकार का है, शुद्ध धर्म और शुभ धर्म। अशुभ को धर्म कहा ही नहीं, अशुभ धर्म नहीं होता। धर्म दो ही प्रकार का होता है, शुभ धर्म और शुद्ध धर्म। ठीक है ना? व्यवस्थित है? समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आता मैं रिपीट करना चाहता हूं। जब तक समझ में नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ूंगा। शुभ को धर्म कहा है, तो चौथे गुणस्थान में जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहेंगे या निश्चय? व्यवहार। ये व्यवहार सम्यक दर्शन किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक रहता है? चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक रहता है। इसके बीच में, इसके रहते हुए वीतराग सम्यक दर्शन इसके साथ साथ ही रह सकता है क्या? व्यवहार सम्यक दर्शन के साथ साथ ही निश्चय सम्यक दर्शन रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। यही कारण है कि चौथे गुणस्थान से लेकर सप्तम गुणस्थान तक नियम से एक ही सम्यक दर्शन रहेगा, व्यवहार सम्यक दर्शन। फिर वीतराग सम्यक दर्शन किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक रहेगा? तो सातवें गुणस्थान के निर्वृत्ति परक सातवें गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थान तक वीतराग सम्यक दर्शन रहेगा। ये छद्मस्थ जीव के अपेक्षा से कथन है। केवली भगवान का तो सम्यक दर्शन वीतराग रहता ही है, उसका सवाल नहीं, किंतु छद्मस्थ जीव जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करता तब तक ही इन तीन उपयोगों का कथन चलता है ना। अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का कथन छद्मस्थ जीवों में है, या केवली भगवान को भी इसमें ले लें? नहीं, केवली भगवान का कथन इन उपयोगों के साथ नहीं होता। इन उपयोगों के साथ केवल उन्हीं जीवों का कथन होता है जो जीव अभी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं। बात समझ में आ गई? इतना तीन उपयोगों का कथन केवलियों का है क्या? नहीं है। केवली का उपयोग कौन सा उपयोग? केवली का, केवल ज्ञानी का कौन सा उपयोग? केवल ज्ञान उपयोग। उसको शुद्धोपयोग नहीं कहेंगे, उसको शुद्धोपयोग नहीं कहेंगे। हां, केवल ज्ञान शुद्ध ही रहता है, यह बात अलग है। इस अपेक्षा से उनका उपयोग भले ही शुद्ध हो, परंतु केवल ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत उनके उपयोग को केवल ज्ञानोपयोग ही कहेंगे, क्योंकि वह केवल ज्ञानोपयोग शुद्धोपयोग का कार्य है और शुद्धोपयोग उसका कारण है। केवल ज्ञान शुद्धोपयोग से होता है क्या? नहीं। तो उस केवल ज्ञान का कारण कहलाया या कार्य कहलाया? कारण। इसलिए शुद्धोपयोग के द्वारा केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद उस उपयोग को केवल ज्ञानोपयोग कहो और शुद्ध भी कहो, कोई दिक्कत नहीं। परंतु शुद्धोपयोग भी रहता है और केवल ज्ञानोपयोग भी रहता है, ऐसा मत कहो, क्योंकि कारण कार्य का अंतर है। शुद्धोपयोग कारण है और केवल ज्ञानोपयोग कार्य है। तो कार्य उत्पन्न होने के बाद भी कारण रहता है क्या? नहीं रहता। इसलिए केवल ज्ञानोपयोग को शुद्धोपयोग मत कहो, उसको केवल केवल ज्ञानोपयोग ही बताओ, क्योंकि वह कार्य है और शुद्धोपयोग कारण है। शुद्धोपयोग कारण है यह तो पता चल गया, और कारण होने से इसका अस्तित्व कहां से कहां तक है यह भी पता लगना चाहिए, क्योंकि शुद्धोपयोग के साथ रत्नत्रय जो होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो रत्नत्रय होता है, वह वीतराग रहेगा क्या सराग रहेगा? वीतराग रहेगा। मतलब जहां जहां शुद्धोपयोग है वहां वहां रत्नत्रय वीतराग है, तीनों रत्न वीतराग रूप है, और जहां जहां शुभोपयोग है वहां वहां राग है, और जहां जहां राग है वहां वहां के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सराग। तो सराग मोक्ष मार्ग और वीतराग मोक्ष मार्ग, ये दो प्रकार के मोक्ष मार्ग हैं। सराग मोक्ष मार्ग को किस गुण स्थान से ले? हां, यहां पर भी सुधार होना संभव है, सुधार होना जरूरी है। आपने बोला कि चौथे से लेकर सातवें गुण स्थान तक व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है, गलत नहीं हुआ? ये कहना गलत हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि मार्ग जो होता है, मार्ग दो से बनता है क्या तीन से बनता है, ये उमा स्वामी आचार्य कत्वार सूत्र में कह रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण, क्या सम्यक दर्शन ज्ञान मोक्ष मार्ग है? ऐसा है, उसमें तीनों है क्या दो ही है? तो चौथे गुण स्थान में दो रत्न है क्या तीनों रत्न है? बोलो, दो हैं। तो वहां पर मोक्ष मार्ग कैसे शुरू हो गया? आपने कह दिया कि चौथे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। तो मोक्ष मार्ग का शुरुआत किस गुण स्थान से होगा ये विचार नहीं हो गया? अगर मोक्ष मार्ग चौथे में नहीं है तो पंचम में होगा, क्योंकि वहां पर संयम तो है, एक देश संयम, तो वहीं से होगा। तो वहां से स्टार्ट कराओगे क्या मोक्ष मार्ग को? कराओगे? क्यों नहीं कराओगे? कारण क्या है? क्यों कराना नहीं चाहते? वहां पर असंयम भी है और एक देश संयम भी है, और दोनों मिक्स होने से उस संयम को संयम कहा नहीं जाएगा। जिसमें असंयम भी हो और संयम भी हो, उस संयम को सीमा संयम कहा जाएगा, किंतु संयम तो नहीं कहा जाएगा ना, सीमा संयम है वो। और सीमा संयम को मोक्ष मार्ग कहा? मोक्ष मार्ग कहा क्या उमा स्वामी आचार्य ने? वहां पर चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा, सीमा संयम को नहीं। और वह चारित्र सैमा संयम रूप चारित्र है या सकल चारित्र है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, चारित्र वो कौन सा चारित्र? सकल चारित्र। तो सकल चारित्र किसके पास होता है और किस गुणस्थान में होता है? छठे गुणस्थान में होता है और किसके पास होता है? मुनि के पास होता है। सकल चारित्र मुनि के पास होता है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, यह जो सूत्र कह रहा है वो सकल चारित्र से संबंधित है या विकल चारित्र से भी है? ध्यान से सुन रहे कि नहीं? क्या उड़ रहा है दिमाग? इधर उधर हो रहा है, मनोयोग इधर है। सकल चारित्र है क्या विकल चारित्र है? किस गुणस्थान में? छठे गुणस्थान में। तो छठे गुणस्थान में यदि सकल चारित्र है तो वहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा या पांचवें से ही होगा? छठे से होगा। मतलब मोक्ष मार्ग के प्रारंभ के लिए सकल संयम चाहिए क्या? एक देश संयम भी चलेगा? सकल संयम भी चलेगा, सकल संयम ही चाहिए पड़ेगा। एकाग्र है, क्योंकि हम जो प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर भी देना पड़ता है, इसलिए एकाग्रता के बिना उत्तर देना संभव नहीं है ना। धीरे धीरे विषय को जमाते हुए जाना है अपने को, और विषय नहीं जमता है तो फिर वही क्वेश्चन रहते हैं, कल के दिन भी वही हैं और जिंदगी भर भी वही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्टेप बाय स्टेप जमाया जा रहा है उतना तो कम से कम हम जमाएं, फिर आगे का और देखेंगे। प्रश्न बाद में देखेंगे उसको, पर ये जो जमाया जा रहा है बेसिक पहले हम जमाते हैं, फिर चर्चा भी करते हैं उसके साथ। मोक्ष मार्ग कहां से शुरू होता है यह हमको मालूम नहीं था अभी तक, अब मालूम पड़ गया। कहां से शुरू होगा वो, किस चारित्र से शुरू होगा, और दो रत्न चाहिए क्या तीनों रत्न चाहिए, ये अभी अभी पता चला। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहा है तो ये तीनों का सद्भाव छठे गुणस्थान में है। गंगा सिंधु यमुना तीनों मिले और तीनों का जल एक हो तो वहां से चलेगा मोक्ष मार्ग और वो जाएगा सागर तक पानी, और तीन नदी का पानी जब मिल जाता है तो प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, और उतने प्रेशर के बिना घाती कर्मों का चट्टान नाश नहीं होता। तीन नदी का जल जब मिल करके टकराएगा किसी चट्टान से तो चट्टान गिरेंगे, और उन चट्टानों को चूर चूर करके वह जल नदी समुद्र तक ले जाता है। चट्टान गिर गए, नदी जाकर के समुद्र में ढल गई और वह सागर हो गई, नदी ही सागर बन जाती है। तो छठे गुणस्थान में सराग रत्नत्रय है या वीतराग? सराग। तो यहां मोक्ष मार्ग भी क्या कहलाएगा? सराग या वीतराग? सराग ही कहलाएगा। और वीतराग इन रत्नत्रयों को वीतराग बनाने के लिए मुनि महाराज क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं। तो सामायिक के काल में ये व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय कहलाएगा क्या? व्यवहार ही रहेगा, निश्चय कहलाएगा। निश्चय को भेद कहते हैं क्या अभेद? अभेद। और व्यवहार को भेद कहते हैं क्या अभेद? निश्चय मोक्ष मार्ग को भिन्न कहते हैं क्या अभिन्न? अभिन्न। और व्यवहार मोक्ष मार्ग को भिन्न कहते हैं क्या अभिन्न? भिन्न, तो भिन्न भिन्न है। यहां पानी रखा हुआ है सम्यक दर्शन, ये ज्ञान रखा हुआ है शक्कर, यह चारित्र रखा हुआ है ये नींबू का रस। ये अलग अलग रखा हुआ हो तो इनको अलग अलग ही खाना पड़ेगा, और अलग अलग खाना, ये कोई शरबत का पीना नहीं हुआ। क्या पानी पीते समय ये परिकल्पना करेंगे कि मैं शरबत पी रहा हूं? नहीं। तो शरबत यह नाम तीनों के समष्टि का नाम है या अकेले अकेले का नाम है? इन तीनों के मिलन का नाम है शरबत। और उस शरबत को पीने में कितना मजा आता है? तीनों चीजें, पानी, शक्कर और नींबू का रस एक जगह मिल जाए, कितना आनंद आता है। हाँ, ये ऐसा रोज पीना चाहिए। गर्मी के दिनों में बार बार आप शरबत बना करके पीते हैं, अलग अलग क्यों नहीं खाते? अंदर जाकर के शरबत बन जाएगा ना, जाकर के मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा तो मिल जाएंगे लेकिन आनंद नहीं आएगा। पीने का जो आनंद है वो वर्तमान पर्याय में है। हमने अलग अलग खाया, अलग अलग पी लिया, तो फिर अंदर जाकर के जरूर शरबत बनेगा पर आनंद नहीं आएगा। शरबत का आनंद चखोगे कैसे? उसको चखना भी है ना कि शरबत कैसा होता है। तो चखना हो तो मिला करके रखना पड़ेगा, पहले गड़बड़ करना पड़ेगा और फिर थोड़ा थोड़ा पीना पड़ेगा। उसका टेस्ट मिलाने के बाद आता है। तो ध्यानस्थ मुनि जब ध्यान में बैठ जाते हैं तो उन तीनों को मिला देते हैं, तो भिन्न रूप जो रहता है वो अभिन्न होता है। अभिन्न यानी मिलाना, अभेद यानी मिलाना, निश्चय यानी मिला हुआ शरबत, निश्चय शरबत का नाम है। और व्यवहार शरबत का नाम नहीं है, वो तो जल का नाम है, वो तो शक्कर का नाम है, वो तो अलग से रखा हुआ नींबू के रस का नाम है, ये व्यवहार है। ये तीनों अलग अलग रहते हैं छठे गुणस्थान में, जिसको हम शुद्धात्मानुभूति कहते हैं ना, वो निश्चय का नाम है कि व्यवहार का? निश्चय मोक्ष मार्ग का नाम है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग का? निश्चय मोक्ष मार्ग का। तो मुनि को वह छठे गुणस्थान में मिल सकता है क्या? छठे गुणस्थान में मुनि को मिल सकता है क्या निश्चय? व्यवहार में रहते हुए निश्चय की भी अनुभूति मिल सकती है क्या? नहीं है, क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय के काल में व्यवहार रत्नत्रय की ही अनुभूति होती है, राग की ही अनुभूति रहती है। प्रशस्त राग होने से व्यवहार रत्नत्रय को व्यवहार कहा है, राग उसे व्यवहार का रूप दे रहा है। और वही राग को हमने उठा लिया तो वो तीनों चीज एक बन जाएंगी, जल एक हो गया, शक्कर एक हो गया और नींबू एक बन गया। उसमें से व्यवहार को उठाना है, उसमें से भिन्नता, भिन्न क्यों कह रहे हैं? राग के कारण से वो भिन्न है, अभिन्न नहीं है। राग को हटा दिया तो हो गया, वो एक बन जाते हैं। और जहां राग नहीं है वहां निश्चय है, और जहां राग है वो व्यवहार है। ये राग कौन सा राग है मुनि महाराज को? प्रशस्त राग है कि अप्रशस्त राग है? प्रशस्त राग है। जो जिस रत्नत्रय में प्रशस्त राग विद्यमान है वो भेद रत्नत्रय कहलाता है, भिन्न मोक्ष मार्ग कहलाता है, भेद मोक्ष मार्ग कहलाता है, वो व्यवहार कहलाता है। भेद यानी भिन्न भिन्न, अलग अलग भेद, इसी को भिन्न या भेद भी कहते हैं या व्यवहार भी कहते हैं। भेद में, भिन्नता में, व्यवहार में नियम से राग विद्यमान रहता है और आत्मा को जब राग विद्यमान रहता है तो आत्मा को राग की अनुभूति होगी क्या वीतराग की? राग की अनुभूति होगी। और राग को हटा दिया तो किसकी अनुभूति होगी? वीतरागता की अनुभूति होगी। इसी वीतरागता को निश्चय भी कहा है, अभेद भी कहा है, वीतराग भी कहा है, अभिन्न भी कहा है, शुद्ध भी कहा है। यहां शुद्ध है, फिर छठे गुणस्थान सप्तम गुणस्थान में नीचे क्या होगा? शुद्ध होगा क्या शुभ होगा? नीचे शुभ है, उस शुभता का कारण क्या है? राग, प्रशस्त राग। प्रशस्त राग के उदय के कारण शुभ भाव है, प्रशस्त राग के उदय के कारण यानी अनंतानु कौन सा मुनि महाराज को संज्वलन, संज्वलन कषाय के मंदोदय के कारण लेशा शुभ है और लेशा शुभ होने से भाव भी शुभ है। भाव शुभ क्यों है ये कहेंगे तो वहां पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को बुद्धि पूर्वक संभाल रहे हैं, राग बुद्धि पूर्वक। ये के शुद्धोपयोग के लिए यही कारण है, इसलिए उन कारणों से राग है छठे गुणस्थान में, ये प्रशस्त राग है। और इस प्रशस्त राग के कारण से व्यवहार है और इसी प्रशस्त राग के कारण से प्रशस्त राग को शुभ राग कहा, शुभानुराग कहा। शुभानुराग होने से भाव शुभ है, भाव शुभ होने से योग शुभ है, योग शुभ होने से लेशा शुभ है, लेशा शुभ, ये सब शुभ है। लेकिन उपयोग कौन सा है उसके साथ? उपयोग भी शुभ है। तो कषाय के कारण से उपयोग शुभ है क्या? संज्वलन कषाय के मंदोदय होने से कषाय उपयोग शुभ है, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? वर्तमान में उदयागत कषाय के मंदोदय तीव्रोदय होने से राग भाव ये प्रशस्त होता है, क्योंकि मुनि के पास पंचेंद्रीय विषय कषाय तो है नहीं और कषाय लेशा अशुभ होना संभव नहीं है, इसलिए छठे गुणस्थान में नियम से तीन ही लेशा मानी है। क्या छह माना है? अशुभ लेशा भी है क्या? अशुभ लेशाओं का सद्भाव किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक है? पहले गुणस्थान से केवल चौथे गुणस्थान तक अशुभ लेशाएं हैं, छठे गुण पंचम गुणस्थान और छठे गुणस्थान में शुभ लेशा है, तीन शुभ लेशा। तो शुभ लेशा के साथ कषाय मंद होती है क्या तीव्र होती है? नियम से मंद होती है। और शुभ लेशा के साथ भाव शुभ होते हैं क्या अशुभ होते हैं? शुभ भाव होते हैं। अब इसी कषाय के उदय के कारण शुभोपयोग है, शुभ उपयोग भी शुभ हुआ है, ऐसा कहेंगे क्या? इसमें कोई अन्य कारण है? यदि संज्वलन कषाय के उदय के कारण से उपयोग को शुभोपयोग कहना हो तो फिर अन्य कषायों को हटाने की जरूरत नहीं, उनके सद्भाव में भी और संज्वलन के उदय में भी शुभोपयोग हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। हाँ, अन्य कषाय प्रकृतियों का अभाव होने के कारण से वहां पर शुभोपयोग है। छठे गुणस्थान का शुभोपयोग अलग है, पंचम गुणस्थान का शुभोपयोग अलग है, चौथे गुणस्थान का शुभोपयोग अलग है, चौथे गुणस्थान का जो शुभोपयोग प्रकट हुआ है वह मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव के कारण से वह ज्ञानोपयोग शुभ बन गया है, क्योंकि धर्म में प्रवृत्त हो गया। सम्यक दर्शन धर्म है, उस सम्यक दर्शन के साथ यह प्रकट हुआ। और पंचम गुणस्थान में जो शुभोपयोग है वो चौथे गुणस्थान वाला ही है, ऐसा नहीं, उसकी क्वालिटी अलग है। तो उसको जब हम शुभोपयोग कहेंगे तो उसके साथ कितनी कषायों का उदय का अभाव होना कराना पड़ेगा? दो, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, इन दोनों का। और इन दोनों का जब अभाव रहेगा तो मिथ्यात्व का तो अभाव हो ही जाएगा उसके साथ। मिथ्यात्व के न होने से, अनंतानुबंधी के न होने से पंचम गुणस्थान में सम्यक दर्शन है। परंतु उस उपयोग की विशेषता यह भी है कि वह चार प्रकृतियों का और उपशमन कर चुका है, इसलिए शुभोपयोग में कुछ तरक्की भी हुई है। जो चारित्र के बाधक कषाय थे, जिस चारित्र के साथ शुभोपयोग होना चाहिए था, उस शुभोपयोग को लाने के लिए, चारित्र के साथ के शुभोपयोग को लाने के लिए कौन सी कषाय बाधक थी? अप्रत्याख्यानावरणी। और सम्यक दर्शन के लिए बाधक क्या था? अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व। अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के न होने से तो सम्यक दर्शन का अस्तित्व है, और अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का न होने से देश संयम है। और देश संयम के साथ जो यह सम्यक दर्शन है, और इस सम्यक दर्शन के साथ जो शुभोपयोग है, उस शुभोपयोग को और चौथे गुणस्थान के शुभोपयोग को क्या एक कह सकते हैं? नहीं है। इसलिए कहा चौथे गुणस्थान से लेकर सप्तम गुणस्थान तक का जो शुभोपयोग है वह क्रमशः विशुद्धि की अपेक्षा से बढ़ता हुआ चला जाता है और उत्कृष्टता का रूप धारण कर लेता है सप्तम गुणस्थान। वृद्धि क्रमेण शुभोपयोग चतुर्थ गुणस्थानात् आ सप्तम गुणस्थान पर्यंतम शुभोपयोग वर्तते, वृद्धि क्रमेण। परंतु नीचे अशुभोपयोग को ऐसा नहीं घटाना कि वो भी वृद्धि क्रम से तीसरे गुणस्थान तक बढ़ता हुआ जाता है, ऐसा नहीं। अशुभोपयोग पहले गुणस्थान में गाढ़ा रहता है, दूसरे में उससे पतला और तीसरे में उससे पतला, ये घटता हुआ जाता है। अशुभोपयोग घटता हुआ जाता है और शुभोपयोग बढ़ता हुआ जाता है, और शुद्धोपयोग भी सप्तम गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक बढ़ता हुआ जाता है। तो देखो शुभोपयोग को ही पाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है? अनंतानुबंधी को हटाना पड़ रहा है। क्या योग को केवल ठीक ठाक करने से और कषाय के उदय मंद करने से, लेशा को शुभ बनाने से शुभोपयोग प्राप्त हो जाएगा? नहीं, कषाय तीव्र भी रहे तब भी शुभोपयोग विद्यमान रहता है। चौथे गुणस्थान में भरत वर चक्रवर्ती चक्र रत्न चला रहा है तो क्या उसका उपयोग बदल गया कहेंगे? भाई के ऊपर चक्र रत्न चला रहा है, कषाय के बिना होता है क्या? अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का तीव्र उदय होने पर ही चक्र रत्न चला रहा है। लेशा कौन सी है उस समय? अशुभ लेशा। कषाय का उदय, वर्तमान उदय कौन सा है वहां? कषाय का उदय, कौन सी कषाय का उदय है? अप्रत्याख्यानावरणी। उसका मंदोदय है क्या तीव्रोदय है? मंदोदय है क्या तीव्रोदय है? चक्र रत्न चलाते समय है तीव्रोदय। फिर लेशाशुभ है क्या अशुभ है? अशुभ है। तो फिर योग शुभ है क्या अशुभ है? योग योग पूछ रहे हैं, योग योग अशुभ है, योग अशुभ हो गया। किस कारण से अशुभ योग कहलाया यह समझ में आ रहा है। लेशा के अशुभ होने से भाव अशुभ हो गए, भाव अशुभ होने से योग मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है वो अशुभ हो गया। अब हम पूछते हैं भरत चक्रवर्ती का चक्र रत्न चलाते समय उपयोग कैसा है, शुभोपयोग। किस कारण से शुभोपयोग है, भावों के कारण से या सम्यक्त्व के सद्भाव के कारण से। हाँ, चक्र रत्न चलाते समय सम्यक दर्शन छूटेगा क्या? वो तो छूट नहीं सकता क्योंकि क्षायिक है। चक्रवर्ती का जो सम्यक दर्शन है क्षायिक है, छूटने का संबंध ही नहीं आता। वो छूट जाए और पुनः प्राप्त हो जाए चक्र रत्न चलाने के बाद में, पश्चाताप जब होगा भाई के ऊपर चक्र चलाया, ऐसा तो होता नहीं। क्षायिक सम्यक दर्शन है अनंतानुबंधी कषाय और दर्शन मोहनी कषाय मिथ्यात्व तो दर्शन मोहनी प्रकृति मिथ्यात्व तो, इन दो के उदय के कारण से जिस सम्यक दर्शन का घात हो रहा था सातों प्रकृतियों को निर्जरा कर डाला। इसलिए वहां का ज्ञानोपयोग शुभ शुभ ज्ञानोपयोग है। वहां का ज्ञानोपयोग शुभोपयोग रूप है और यह शुभोपयोग चाहे चक्र रत्न चला लो, चाहे छह खंड को विषय कषायों को संभालते रहो, चाहे मंदिर में आ जाओ शुभानुष्ठान करो, ये उपयोग तो शुभ ही रहने वाला है। जब तक सम्यक दर्शन साथ में है तब तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं आना और आएगा भी नहीं। भरत चक्रवर्ती का सम्यक दर्शन है, हम लोगों का तो आ भी सकता है, परंतु अपन भी जब सांसारिक विषय कषायों में लगे रहते हैं, योग तो अशुभ होता है परंतु सम्यक दर्शन छूटता है क्या आपका है? दुकान में बैठते समय, इंद्रिय विषयों में रहते समय सम्यक दर्शन छूटता है? इंद्रिय विषयों में जाते ही अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा? नहीं आता, क्योंकि सम्यक तो किसकी परिणति है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, श्रद्धान की परिणति। ये श्रद्धान छूट जाएगा क्या विषयों में रहते हुए? भाई के साथ लड़ रहे थे भरत चक्रवर्ती के जैसे, घर में झगड़ा चल रहा था और उस समय हमारा सम्यक दर्शन ही छूट गया, ऐसा होता है क्या? झगड़ते समय देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान ही समाप्त हो गया, उस झगड़े से और देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से मतलब है क्या, कोई संबंध है क्या? नहीं, श्रद्धान तो रहता ही है। अगर बीच में झगड़ते समय मुनि महाराज आ गए तो झगड़ा छोड़कर मुनि महाराज का दर्शन करते हो क्या? नहीं करते, करते हैं। अगर श्रद्धान टूट गया होता तो दर्शन करते? नहीं करते। तो ये सांसारिक जो झगड़े रहते हैं हमारे योग को अशुभ बनाते रहते हैं। हमारी कषाय उस समय अप्रत्याख्यानावरणी कषाय तीव्र रहती है और भाई के साथ झगड़ा नहीं कर रहे हैं, सही व्यवहार कर रहे हैं, मंद कषाय के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो लेशाशुभ है। सांसारिक अनुष्ठानों में आप रहते हुए भी लेशाशुभ रख सकते हैं, करो ना, सही व्यवहार करो, व्यापार करो तो न्याय से करो, शुभ लेशा है। पर कषाय को तीव्र बना करके भी तो व्यापार कर सकते हैं, उस समय लेशा अशुभ रहेगी। यानी संसार के कार्यों में रहते समय हम लेशा को और कषाय को शुभ भी रख सकते हैं अशुभ भी रख सकते हैं, पर मंदिर में जब आएंगे तब क्या कहोगे? लेशा को और कषाय को दोनों तरह से रख सकते हैं क्या? एक ही तरह से रखते हैं? रखना तो एक ही तरह से चाहिए, लेकिन हो सकता है मंदिर में आने के बाद, मंदिर में आने के बाद भगवान के सामने तो भगवान को देख करके तो नहीं झगड़ेंगे, जरा गर्भालय से बाहर आएंगे और उस व्यक्ति से झगड़ेंगे, क्यों? मैंने कल कहा था ना, कोई भी झगड़ा, घर का झगड़ा मंदिर में लगा सकते हैं क्या? नहीं, अविवेकी जन लगा सकते हैं। अप्रथ्याख्यानावरणी कषाय का तीव्रोदय हो गया तो घर का झगड़ा भी मंदिर में कर सकता है श्रावक, और वहां अगर झगड़ा हो गया तो अप्रथ्याख्यानावरणी कषाय का तीव्रोदय माना जाएगा। लेशा कैसी मानी जाएगी? अशुभ लेशा। तो मंदिर में रहते हुए भी अशुभ लेशा हो सकती है। मंदिर में रहकर यहां झगड़ा करेंगे तो लेशा अशुभ होगी। एक कारण ये कि घर के झगड़े को मंदिर में लाएंगे तो कषाय और लेशा और उसके साथ भाव और उसके साथ योग ये अशुभ होंगे ही। उपयोग कैसा रहेगा? चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक का उपयोग कैसा रहेगा? शुभ ही रहेगा। क्यों? सम्यक दर्शन है इसलिए। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धा के प्रति उन्होंने अश्रद्धा किया क्या? नहीं किया, इसलिए उपयोग शुभ है। सम्यक दर्शन के होने से उपयोग शुभ है, पर उस सम्यक दर्शन के रहते हुए वर्तमान का कषाय वह अप्रत्याख्यानावरणी कषाय तीव्र मंद होता रहेगा क्या? नहीं होता रहेगा, पर वह तीव्र मंद होना क्या सम्यक्त्व के लिए बाधक है? बाधक नहीं है। तो सम्यक्त्व के लिए बाधक नहीं है तो शुभोपयोग के लिए भी बाधक नहीं है, क्योंकि जहां जहां सम्यक दर्शन रहता है वहां वहां शुभोपयोग भी रहता है, इसलिए बाधक नहीं। जहां जहां सम्यक दर्शन है वहां वहां शुभोपयोग है, जहां जहां शुभोपयोग है वहां वहां सम्यक दर्शन है। अविनाभाव संबंध है सम्यक्त्व के साथ शुभोपयोग का। शुभोपयोग का संबंध योग के साथ कोई संबंध नहीं है। योग अशुभ भी होता रहे, शुभ भी होता रहे, उपयोग का कुछ बिगड़ता नहीं। शुभोपयोग का, शुभोपयोग का कुछ भी बिगड़ता नहीं। तीव्र हो जाए तो भी रहता है और मंद हो जाए तो भी रहता है। योग शुभ हो जाए तो भी रहता है, योग अशुभ हो जाए तो भी रहता है। यदि हम योग के साथ उपयोग को भी शुभाशुभ होता है ऐसा जोड़ देंगे तो बार बार गिरता है और बार बार चौथा गुणस्थान होता है, बार बार गिरता है और बार बार सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कहेंगे, कहना पड़ेगा। उपयोग का, उपयोग की जो परिभाषा बनती है वह कषाय के तीव्रोदय और मंदोदय से नहीं बनती, कषाय के उपशमन से बनती है। उस कषाय का उपशमन हो, जो कषाय उपयोग का घातक है, तो अशुभोपयोग का घातक कषाय अनंत अनुबंधी है, उसका तो उपशमन चाहिए पड़ता, मंदोदय नहीं। अनंतानुबंधी के मंदोदय से शुभोपयोग हो गया ये कहेंगे तो पहले गुणस्थान में ही शुभोपयोग हो गया ये कहना पड़ेगा। अनंतानुबंधी के मंदोदय से योग शुभ हो गया ये कह सकते हैं क्या? नहीं, ये कह सकते हैं। लेशा शुभ हो गई ये कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं, परंतु उपयोग शुभ हो गया ये नहीं कह सकते, क्योंकि योग के शुभ को, लेशा के शुभ को और कषाय मंदोदय के शुभ प्रवृत्ति को इस पर आरोप नहीं कर सकते। ये उपशमन मांगता है, शुभोपयोग उपशमन करना मांगता है, अशुभोपयोग उदय मांगता है अनंतानुबंधी का। मंदोदय नहीं मांगता। शुभ योग नहीं मांगता। अशुभोपयोग कहता है मैं पहले गुणस्थान में रहता हूं, योग शुभ हो जाए तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं शुभ नहीं बनता, और लेशा शुभ हो जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं शुभ नहीं बनता। तो तुम शुभ कब बनोगे? तो इस कषाय को ये हटा दो तो मैं शुभ बन जाऊंगा। क्या करें, उपशमन करें, या तो क्षय करें या तो क्षय उपशम करें। तीन अवस्थाएं हैं, उपशम करें, क्षोपशम करें या क्षय करें। तो वह अशुभोपयोग कहता है, ये अगर काम करते हो तो मैं अपने अशुभ अशुभपने को छोड़कर शुभ के रूप में कन्वर्ट होता हूं। परंतु कन्वर्ट होने का मतलब यह है कि ज्ञानोपयोग जिसको बोलते हैं हम, वो निरंतर है, उपयोग लक्षण, उसके ऊपर अनंतानुबंधी का उदय का प्रभाव है उस उपयोग के ऊपर। उस कारण से उसी उपयोग को अशुभोपयोग कहा जा रहा है, नाम पड़ रहा है अशुभोपयोग। अनंतानुबंधी के वजह से, उदय के वजह से, सत्ता के वजह से नहीं। सत्ता में तो वो ग्यारहवें गुण स्थान तक भी उसकी सत्ता हो सकती है, अनंत अनुबंधी की सत्ता। यहां उदय का तात्पर्य है, अनंत अनुबंधी का उदय रहेगा तो अशुभोपयोग ही रहेगा। तो फिर ज्ञानो, उस टाइम का जो ज्ञानोपयोग है, उस ज्ञानोपयोग पर भी तो इसका प्रभाव है, अनंत अनुबंधी का उदय का प्रभाव। और योग पर किसका प्रभाव है? उसी उदय के तीव्र का, मंद का प्रभाव। लेशा पर किसका प्रभाव है? उसी कषाय का मंदोदय और तीव्रोदय होते रहना, ये लेशा के ऊपर प्रभाव है। तो योग के ऊपर, भावों के ऊपर और लेशा पर तीव्र मंद, तीव्र मंदता का प्रभाव रहता है, पर उपयोग पर उदय का प्रभाव रहता है। वो उदय को स्वीकार करता है तो अशुभोपयोग, वही ज्ञानोपयोग प्रथम गुणस्थान वाला। उदय को स्वीकार करता है, अनंतानुबंधी के उदय को, तो वह अशुभोपयोग। और उपशमन को स्वीकार करता है तो वही ज्ञानोपयोग शुभोपयोग। और यह शुभोपयोग शुभ क्यों है? तो बुद्धिपूर्वक रागादि भाव, प्रशस्त भाव जो उदयागत कषाय के कारण वर्तमान में, उस गुण स्थान में वर्तमान में उदयागत जो कषाय होती है, उस कषाय के काल में जीव प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग वाला होता है। तो प्रशस्त राग अप्रशस्त राग के कारण से वह या तो अशुभ में रहता है या तो शुभ में रहता है। वृत्ति हो तो शुभ प्रवृत्ति वाला होता है, जैसे उदाहरण पंचम गुणस्थान हो तो प्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय, प्रत्याख्यानावरणी कषाय का तीव्रोदय होने से योग बिगड़ेगा, अशुभ हो जाएगा, भाव बिगड़ेगा, अशुभ हो जाएगा, लेशा बिगड़ेगी, अशुभ हो जाएगी। ये प्रत्याख्यानावरणी कषाय का तीव्रोदय है। परंतु यहां परिग्रह की अपेक्षा करेगा तो कषाय बिगड़ सकती है, लेशा बदल सकती है। पंचम गुणस्थान वाला जीव अनुवृत्ति है, जितने परिग्रह का त्याग किया है सब एक देश है, सब एक देश है। तो एक देश होने से अब त्यागे हुए परिग्रह में ग्रहण करने के भाव तो होंगे नहीं। त्यागे हुए परिग्रहों को पुनः ग्रहण करने के भाव यदि कर लेता है तो उसको अप्रत्याख्यान का उदय हो जाएगा, अप्रत्याख्यानावरणी का। और नहीं होगा तो प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय में रहेगा। अब इस गुणस्थान में आगम ग्रंथों के अनुसार तो पंचम गुणस्थान में तीन लेशा मानी, चार नहीं। क्यों परिग्रह है और चार क्यों नहीं? परिग्रह है भी और त्याग भी है थोड़ा बहुत, तो जब जब वह परिग्रह में प्रवृत्ति करेगा, खेती भी कर सकता है, सातवीं प्रतिमाधारी है, आरंभ सारंभ आदि कार्य कर सकता है, सातवीं प्रतिमाधारी है, भोजन पका रहा है, सांसारिक विषय कषाय में तो उलझा हुआ है, तो उस समय अशुभ क्यों नहीं होता? प्रत्याख्यानावरणी कषाय जब के उदय के साथ, प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय के साथ जब सांसारिक कार्यों में उलझता है तो अशुभ लेशा क्यों नहीं होती, अशुभ भाव क्यों नहीं होते? और आर्त रौद्र ध्यान दोनों को स्वीकार किया है उस गुणस्थान में, यह भी बात है, आर्त ध्यान भी है और रौद्र ध्यान भी है। इसके बावजूद भी तीन ही लेशा स्वीकार करते हैं आगम ग्रंथों में, अशुभ लेशा को स्वीकार नहीं करते। तो योग अशुभ होता है कि नहीं पंचम गुणस्थानवर्ती जीव का? और योग अशुभ होने के लिए सांसारिक कार्य तो चाहिए ही, परंतु कषाय का तीव्रोदय चाहिए। तो प्रत्याख्यानावरणी कषाय के तीव्रोदय में लेशा बिगड़ती क्यों नहीं है? तो कहते हैं अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरणी इन दो कषायों में लेशा को अशुभ बनाने की ताकत है, किंतु अप्रत्याख्यानावरणी कषाय को लेशा को अशुभ बनाने की ताकत नहीं है। फिर रौद्र ध्यान कैसा? रौद्र ध्यान को क्या फिर अशुभ लेशा के साथ ही मानते हो क्या? आर्त ध्यान को, रौद्र ध्यान को नहीं। प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय में पंचम गुण स्थान में जिसके साथ निरंतर शुभ लेशा है, शुभ लेशा के साथ रहते हुए भी वह आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर सकता है। शुभ लेशा के साथ भी वह कपड़ा धो रहा है, शुभ लेशा के साथ दुकान में बैठा हुआ है, तीव्र नहीं होने देगा कषाय को। प्रत्याख्यानावरणी कषाय को वह तीव्र भी करेगा तो शुभ लेशा, और मंद भी करेगा तो शुभ लेशा। यानी केवल एक प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय के साथ लेशा परिणति को शुभ माना जा रहा है आगम ग्रंथों में, किंतु अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के साथ उदय के साथ चौथे गुणस्थान में तीव्र होगा तो अशुभ लेशा, मंद होगा तो शुभ लेशा, ऐसा माना जा रहा है। तो यही तो जीवों के परिणामों की महिमा है, यही तो विशेषता है। पंचम गुणस्थान में एक देश अनुवृत्ति होने के बाद वह प्रत्याख्यान का उदय वाला हो जाता है, अनंत अनुबंधी का उपशमन करता है, अप्रत्याख्यानावरणी का उपशमन करता है, मिथ्यात्व का उपशमन तो है ही, सम्यक तो साथ आ रहा है, तो मिथ्यात्व का उदय नहीं है। अप्रत्याख्यानावरणी को उपशमित किया है तो असंयम भाव नहीं है, एक देश संयम भाव के संयम भाव प्रकट हो गए, और ऐसे एक देश संयम भाव के काल में वह जब संयम धारण करता है तो शुभ लेशा है, लेकिन शुभ में भी तरतमता रहेगी, मंदिर आएगा उस शुभ लेशा में और दुकान में बैठेगा उस शुभ लेशा में, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क करना पड़ेगा, पर लेशा रहेगी शुभ ही। रौद्र ध्यान भी करेगा शुभ लेशा के साथ, परंतु वो रौद्र ध्यान ऐसा मत समझो कि वो तीव्र होता है फिर शुभ लेशा कैसे, रौद्र ध्यान तीव्र नहीं रहता, वो मंद रौद्र ध्यान रहता, मंद आर्त ध्यान रहता, तीव्र रौद्र ध्यान कराने लायक शक्ति प्रत्याख्यानावरणी कषाय के भीतर नहीं है, इसलिए होगा ही नहीं। चक्र रत्न नहीं चलाएगा, इतनी तीव्र कषाय नहीं करेगा। कौन? प्रतिमाधारी। प्रतिमाधारी राजनीति के वोट देना यानी खड़े होना, ये राजनीति में भी नहीं जाता, क्योंकि वहां कषाय तीव्र होने की संभावना रहती है। उन कार्यों को नहीं करता जिन कार्यों में कषाय की तीव्रता होती है और लेशा बिगड़ सकती, शुभ की जगह अशुभ हो जाए। इसलिए कहते हैं प्रतिमाधारी वोट भी नहीं दे सकता। वोट देने वाला कषाय के साथ देता है अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए, कषाय परिणति को पुष्ट करने के लिए देता है कि हमारे पक्ष नहीं रहे। और राजनीति काय के लिए? विषय कषायों की व्यवस्था के लिए राजनीति होती है। हमको ये सुविधा चाहिए, ये सुविधा, ये पक्ष ठीक नहीं, वो पक्ष ठीक है, सांसारिक विषयों को ठीक ठाक रखने के लिए तो चलता है ये घड़म घड़ा। तो अनुवृत्ति तो संतोष परिणामी है, उसके परिणाम संतोष परिणाम। इसलिए परिग्रह को कुछ त्यागा और परिग्रह को कुछ रखा भी है तो संतुष्ट परिणामी है। उनको राजनीति में लड़ करके संसार करने की कोई जरूरत नहीं। जितना वह कमा रहा है, रख रहा है, उसमें उसका संसार चल रहा है, संतोषी है। पांचवें गुणस्थान में तीव्र झगड़े नहीं रहते, चौथे गुणस्थान में रहते हैं। सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी चक्र रत्न चला रहा है, भर चक्रवर्ती को मालूम है कि ये गला काट देगा भाई का, ये कृष्ण लेशा है। क्षायिक सम्यक दृष्टि के पास कृष्ण लेशा भी हो सकती है और उस कृष्ण लेशा का क्षायिक सम्यक तो से कुछ लेन देन नहीं है। क्षायिक सम्यक तो एक अनंत अनुबंधी और दर्शन मोहिनी के क्षय का परिणाम है, क्षायिक हो गया। क्षायिक उस वजह से है ये, परंतु वर्तमान में उदयागत जो अप्रत्याख्यानावरणी कषाय है उसके वजह से जो भाई के ऊपर चक्र रत्न चलाने के भाव आ रहे हैं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्षायिक सम्यक्त्व के साथ। वो क्षायिक ही रहेगा, क्या गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और क्षायिक सम्यक्त्व के साथ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उपयोग के साथ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो शुभ ही रहेगा। जब तक सम्यक्त्व हमारा साथी है तब तक मैं शुभ रहूंगा, ऐसा उपयोग कहता है। मेरा साथी अनंतानुबंधी बन जाए, अनंतानुबंधी कषाय बन जाए तो मैं अशुभ बन जाऊंगा। अशुभ यानी अधर्म और यहां शुभ यानी धर्म। चौथे गुणस्थान में इस उपयोग के साथ सम्यक्त्व धर्म बैठा हुआ उस उपयोग के ऊपर, इसलिए इसको शुभोपयोग कहते हैं। अशुभोपयोग अनंत संसार का कारण और शुभोपयोग मोक्ष का कारण, ये तो कहा ही है। शुभोपयोग मोक्ष का कारण और अशुभोपयोग अनंत संसार का कारण। यदि योग बदलने से अशुभोपयोग अगर शुभोपयोग हो जाए तो वहां पर सम्यक दर्शन को भी होना पड़ेगा, जबकि पहले गुणस्थान में सम्यक तो होता नहीं। अनंत अनुबंधी के मंदोदय से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होता है क्या, रहता है क्या? क्या उपशमन से रहता है? उपशमन से रहता है। सम्यक दर्शन होने के लिए उपशमन हो, क्षौपशम हो या क्षायिक हो, क्षय ये है। तो देखो पंचम गुणस्थान में तीन लेशा है, शुभोपयोग है, शुभोपयोग है, तीन लेशा है। वहां के शुभोपयोग के साथ नीचे के शुभोपयोग की तुलना कर सकते हैं चौथे गुणस्थान की शुभोपयोग को? नहीं, क्योंकि पंचम गुणस्थान में उस शुभोपयोग के साथ जो कषाय चाहिए थी वो कषाय है, जो लेशा चाहिए थी वो लेशा भी है, जो भाव चाहिए थे वो भाव भी हैं, जो त्याग चाहिए था वो त्याग भी है। तो इस शुभोपयोग में और इस शुभोपयोग में समानता नहीं है, इसलिए कहा जगन्य शुभोपयोग चौथे गुणस्थान में होता है। भले क्षणिक समय दृष्टि हो, उसके पास शुभोपयोग जो रहेगा अत्यंत जगन्य रूप में रहेगा। जब चक्रवर्ती चक्र रत्न चला रहा है उस समय तो अत्यंत जगन्य, जब वो भगवान की पूजा कर रहा होता उस समय थोड़ी बहुत विशुद्धि होती है। वो शुभानुष्ठान के साथ रहने वाला शुभोपयोग और भी विशुद्ध है, उसकी क्वालिटी में फर्क आता है। वह जब सामायिक करता है, वह जब दान देता है सत्पात्र को, उस समय उसमें विशुद्धि अधिक रहती है। यही शुभोपयोग विशुद्धि की अपेक्षा से बढ़ता जाता है और विशुद्धि बढ़ती बढ़ती जब सप्तम गुणस्थान में शुभोपयोग जनित विशुद्धि तीव्र होती है तो प्रशस्त राग भी अत्यंत प्रशस्त होता है और अत्यंत विशुद्धि के साथ रहता है। वो शुभोपयोग जनित विशुद्ध परिणाम जो अत्यंत कषाय के मंदोदय में है, सप्तम गुणस्थान में है, वे संकल्प पूर्वक त्यागे जाते हैं। वो राग परिणाम इतने घनीभूत नहीं होते जिससे कि हम आसानी से छोड़ न सके। आसानी से छोड़ देता है, त्याग कर देता है और वह शुद्धोपयोग में निकल जाता है। तो मुनि महाराज जब शुद्धोपयोग में रहते हैं तब प्रशस्त राग भी नहीं रहता। अप्रशस्त राग को तो बहुत पहले छोड़ा है। अप्रशस्त राग परिग्रह से संबंध रखता है, परिग्रह है ही नहीं, वो तो बहुत पहले छोड़ा है। छठे गुणस्थान में भी परिग्रह नहीं है और सप्तम गुणस्थान के शुभोपयोग के अवस्था में भी परिग्रह नहीं है, तो अप्रशस्त राग की चर्चा तो है ही नहीं। परंतु प्रशस्त राग की चर्चा हो सकती है, तो वो प्रशस्त राग व्रत आदि को पालन करना, यीरा समिति का पालन करना, भाषा समिति का पालन करना, इस समय राग आदि भाव हैं, व्रतों को सुरक्षित रखने के राग भाव हैं, ये प्रशस्त राग भाव शुभोपयोग के भाव हैं और क्वालिटी वाले हैं। वस्तुतः इसको भी शुभोपयोग जो कह रहे हैं अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के न होने से ही वो शुभ है, लेकिन वर्तमान के कषाय जो उदय है संज्वलन उसका तीव्रोदय न होने से इसमें और निखार आया। ये प्रशस्त राग भी मंद होगा तो शुद्धोपयोग में प्रवेश करने का वो प्रयास करेंगे। क्या समिति का पालन करना, छोड़ो इसको, ध्यान करो। क्या उपदेश देना, छोड़ो इसको, इस राग भाव को छोड़ो। क्या विहार करना, आत्मा में विहार करना अच्छा है, चलो इस बाहरी विहार को छोड़ दो। तो शुद्धोपयोग में चले जाते हैं मुनि महाराज, सब कुछ स्टॉप होता है, यानी प्रशस्त क्रियाएं भी स्टॉप होती हैं और प्रशस्त क्रियाओं के प्रति जो मन बार बार विकल्पित होता रहता है वो विकल्पों को भी छोड़ देते हैं। ध्यान में जब बैठ जाते हैं तो उस समय उनके मन वचन काय की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे, शुभ। लेशा कौन सी है, शुभ लेशा। कौन सी कषाय मंदोदय है, किस कषाय का मंदोदय है, संज्वलन का। संज्वलन कषाय के मंदोदय से शुभ लेशा बनी और शुभ लेशा से योग क्या कहलाएगा, शुभ योग है। तो शुभ योग है, शुभ लेशा है, तो शुभ योग से किस कर्म का आश्रय होना है, किस कर्म का आश्रय होना है, साता का, साता का। पुण्य का, पुण्य प्रकृतियों का ही आश्रय होना है। और पुण्य प्रकृति का आश्रय होते समय योग तो शुभ है, परंतु शुद्धोपयोग क्या कर रहा है फिर? शुद्धोपयोग शुभाश्रम का कारण नहीं, शुद्धोपयोग तो संवर का कारण। कितने कर्मों के संवर का कारण? तो अनंतानुबंधी का संवर का कारण बन चुका है, अप्रत्याख्यान का संवर हो चुका है, प्रत्याख्यान का संवर हो चुका है। क्या संज्वलन कषाय का भी संवर कर रहा है? नहीं, उसका बंध और आश्रव तो दसवें गुण स्थान तक है। आश्रव तो पाप का भी हो रहा है, वह पाप प्रकृति का भी आश्रव हो रहा है शुद्धोपयोग के रहते हुए भी। ध्यानस्थ मुनि सप्तम गुणस्थान में, वहां पर संज्वलन कषाय ये प्रशस्त कषाय है कि अप्रशस्त? शुभ पाप प्रकृति है कि पुण्य प्रकृति? पाप प्रकृति, आश्रव बंद चल रहा है वहां। फिर शुद्धोपयोग संवर कैसे करा, किसका करा रहा है? तो संवर उसका करा रहा है जिसका होना नहीं चाहिए बंद, उनका संवर करा रहा है। और जो वर्तमान में बंद होने वाली प्रकृतियां हैं उनका भी संवर करा रहा है। किन प्रकृतियों का? कुछ पुण्य प्रकृतियों का भी संवर करा रहा है और कुछ पाप प्रकृतियों का भी संवर करा रहा है। पाप प्रकृति को देखो किस किस का संवर करा रहा है शुद्धोपयोग? तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, इन सब का संवर कराया। और इनके उदय के कारण से जितने भी कर्म बंधते थे, अनंतानुबंधी के उदय के कारण से, अप्रत्याख्यानावरणी के उदय के कारण से, उन प्रकृतियों का भी संवर करा रहा है। बंद थोड़ी है उनका, शुद्धोपयोग है तो उनका संवर नियम से है। और किसका संवर करा रहा है? तो ध्यानस्थ मुनि महाराज चार प्रकार के आयु कर्म, उसमें पुण्य प्रकृति कितने और पाप प्रकृति कितने आयु कर्म में से? नरकायु पाप प्रकृति है और देवायु पुण्य प्रकृति है, मनुष्यायु पुण्य प्रकृति है और त्रियंशायु तो बता दिया ना, त्रियंशायु पुण्य प्रकृति, त्रियंश गति पाप प्रकृति, त्रियंश आयु पुण्य प्रकृति। क्योंकि उस आयु के उदय में जीव व्रत आदि भी धारण कर सकता है ना, इसलिए पुण्य प्रकृति। और त्रियंश गति जो है वो पाप प्रकृति है। गति में जन्म लेना तो पाप है, पर वहां गति में जन्म लेने के बाद आयु का जो उदय होता है उसमें जो हम धर्म कर सकते हैं, व्रत धारण कर सकते हैं, इसलिए उसको पुण्य प्रकृति कहा। तो मनुष्यायु पुण्य प्रकृति, त्रियंशायु पुण्य प्रकृति और देवायु पुण्य प्रकृति। शुद्धोपयोग के काल में इस, क्योंकि मुनि शुद्धोपयोगी या मुनि सामान्य मुनि शुभोपयोगी किस गति में जाते हैं? देवगति में। देवायु को ही बांधते हैं, नियम है। तो मुनि देवायु को बांधते हैं और मुनि अवस्था में देवायु का आश्रय और बंध है, परंतु शुभोपयोग के काल में इसका बंध होगा क्या शुद्धोपयोग के काल में बंध होगा? देवायु का बंध कहां तक होता है? शुभोपयोग के तक, जहां तक शुभोपयोग वहीं तक देवायु का बंध है। शुद्धोपयोग के साथ उसका संवर है क्या नहीं? फिर शुद्धोपयोग उसका संवर वाला हो गया क्या नहीं? तो पुण्य प्रकृति का भी संवर कर रहा शुद्धोपयोग और पाप प्रकृति का भी आश्रय कर रहा और पुण्य प्रकृति का भी आश्रय कर रहा है, ये भी बात है। कुछ पुण्य प्रकृतियों का संवर करता है, कुछ पुण्य प्रकृतियों का आश्रय और बंध भी करता है, कुछ पुण्य प्रकृति पाप प्रकृतियों का आश्रय भी करता है और कुछ पाप प्रकृतियों का संवर भी करता है। तो ये शुद्धोपयोग करता है ऐसा नहीं। यहां पर जो वर्तमान में उदयागत कषाय है वहां पर कषाय के कारण से शुभ लेशा है और शुभ योग है, उस शुभ योग की देन है कि उस योग के अपराध से पुण्याश्रव और पापाश्रव हो रहा है, ये शुद्धोपयोग का अपराध नहीं। शुद्धोपयोग की उपस्थिति में भी योग पाप और पुण्य प्रकृतियों का आश्रय कराता है और करा भी रहा है। संज्वलन का आश्रय और बंद शुद्धोपयोग के काल में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। वो शुद्धोपयोग की देन है या योग की देन है? आश्रय और बंद योग, उपयोग बंद का कारण नहीं है, रत्नत्रय बंद का कारण नहीं है। शुद्धोपयोग तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, रत्नत्रय स्वरूप है, वो बंद का कारण नहीं है। उसके रहते हुए भी योग अपराधी है। वहां जो योग है, वह योग जो भी योग हो वो योग तो है। वहां संज्वलन कषाय के उदय के साथ वाला योग है। तो वह योग संज्वलन कषाय का आश्रय और बंद करा रहा, और एक तरफ देवायु का आश्रय और बंद भी करा रहा है। पुण्य है ये, पाप का भी और पुण्य का भी, दोनों का। लेशा कैसी है? लेशा तो शुभ ही है, शुद्धोपयोग के काल में सप्तम गुणस्थान में इस शुभ लेशा के साथ पापाश्रय हो रहा है। योग शुभ है, शुभ योग के साथ भी पापाश्रय है। वह है, यह सामान्य कथन है कि शुभ योग शुभाश्रव का कारण और अशुभ योग अशुभाश्रव का कारण, यह सामान्य नियम है। आप भीतर और जाओगे तो और पता चलेगा। अरे सप्तम गुण स्थान में तो ध्यान में बैठे हुए मुनि को अशुभ योग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेशा शुभ है, कषाय मंद है, योग शुभ है। अशुभ योग के बिना यहां अनंत संज्वलन कषाय ये पाप प्रकृति है, उसका बंद कैसे हो रहा है? पाप प्रकृति का बंद हो रहा है। नौ नौ कषाय ये भी सब अशुभ प्रकृति है, पाप प्रकृति, उसका कैसे बंद हो रहा है? तो हो रहा है, हो रहा है। आपको ये बात मालूम नहीं थी इसलिए हो रहा है। आप क्या समझ रहे थे? शुभ पुण्यश अशुभ पापश, शुभ योग पुण्य बंध का कारण और अशुभ योग पाप बंध का कारण, इतना ही मालूम था। लेकिन उसके बाद की जो बात थी वो मालूम नहीं था। तो शुभ योग तो है, वहां अशुभ योग के बिना संज्वलन कषाय का बंध क्यों कैसे हो रहा है? योग तो शुभ है, सप्तम गुण स्थान है, ध्यान अवस्था में। और जिस समय हम इरापद शुद्धि से चलते हैं उस समय में भी शुभ योग है, उस समय में भी संज्वलन कषाय का बंद हो रहा है, नौ नौ कषाय का बंद जारी है। तो ये एकांत ग्रहण नहीं है कि शुभ योग पुण्याश्रव ही करता है और अशुभ योग पापाश्रव ही करता है, ऐसा एकांत ग्रहण कर नहीं सकते। तो देखो, तीन उपयोगों का कथन किया, बहुत टाइम हो गया, तीन उपयोगों का कथन किया, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। जो उपयोग का कथन है वो कषाय, इतना ही ध्यान रखो, उनकी कषायों के उपशमन, क्षयोपशम और क्षय आदि पर डिपेंड है उपयोग। और योग वर्तमान के उदयागत कषाय से लेशा बनती है, योग बनता है, भाव बनते हैं, वो शुभ भी बनते हैं, अशुभ भी बनते हैं, ऐसा इसको जमा लेना। तो फिर वह ऑटोमेटिक समझ में आता है कि शुद्धोपयोग फिर सप्तम से ही क्यों, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। शुभोपयोग का अभाव हुए भी ना शुद्धोपयोग होगा क्या? कारण है, कारण कौन है यहां, कार्य कौन? कार्य शुद्धोपयोग और शुभोपयोग, शुभोपयोग का अभाव करना है ना, तो शुभोपयोग का अभाव किस गुण स्थान में होता है? हाँ, इसको त्यागना है ना। क्या कारण के सद्भाव के काल में भी कार्य होता है? कारण और कार्य दोनों एक साथ रहते हैं, तो जहां जहां कारण है वहां कार्य है क्या? नहीं है। छठे गुणस्थान में भी शुद्ध उपयोग कहां से लाओगे बताओ? सप्तम गुणस्थान में भी लो, जो जहां पर शुभ उपयोग है वहां पर कहां से लाओगे शुद्ध उपयोग को? कारण के काल में ही कार्य लाओगे? नहीं हो सकता। तो सप्तम गुणस्थान में भी जहां शुभ उपयोग है वहां पर भी मुनि महाराज शुद्धोपयोगी नहीं है, क्योंकि वहां कारण मौजूद है, कारण का अभाव हुए बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। कारण ही कार्य के रूप में ढलता है, जैसे मिट्टी ही कलश के रूप में ढलता है, वैसे ही मिट्टी कारण है और कलश कार्य है, तो मिट्टी ही ढलता जा रहा है, आकार धारण करता करता उसमें ढल गया। तो जिस समय में, जिस अवस्था में हम शुभोपयोग को धारण करते हैं, उस समय आत्मा के उपयोग शुभ रूप है, और वही ज्ञानोपयोग आगे बढ़ता है तो शुभ पर्याय को त्याग देता है, शुद्ध पर्याय में पहुंच जाता है, कलश बन जाता है। शुभ मिट्टी और शुद्ध कलश है, तो पर्याय का त्याग होता है। किस समय त्याग होता है? तो कहते हैं शुभोपयोग जगन्य अवस्था से लेकर जब तक वह अपने आप को प्रौढ़ नहीं बनाता 100%, तब तक वह शुद्धोपयोग का कार्य प्रारंभ नहीं होता। जगन्य कार्य के साथ, देखो कारण के साथ, जगन्य कारण के साथ, जगन्य कारण चौथे गुणस्थान में भी है शुभोपयोग का, जगन्य कारण। और उत्कृष्ट कारण कहां है? सप्तम गुणस्थान में। तो जगन्य कारण के साथ भी यदि शुद्धोपयोग होता है ये कहेंगे, तो सब पांचवें गुणस्थान में शुभोपयोग है, आगे के शुभोपयोग को क्या कहेंगे? जगन्य कारण कहां है? शुभोपयोग जगन्य शुभोपयोग कहां है? चौथे में। तो जगन्य शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण है ये मानेंगे, तो अगले गुणस्थानों में जो शुभोपयोग है वो क्या है? वो सब शुद्धोपयोग है क्या? शुद्धोपयोग तो है नहीं। तो यहां जगन्य कारण शुभोपयोग जो कारण रूप है, जगन्य है, वह किसका कारण है? तो अगले शुभोपयोग का वो कारण है और अगला शुभोपयोग उसका कार्य है। हां, अगला शुभोपयोग उसका कार्य है, जगन्य शुभोपयोग का जगन्य शुभोपयोग मध्यम शुभोपयोग का कारण है और मध्यम शुभोपयोग उसका कार्य है। अब मध्यम शुभोपयोग कारण है और उत्कृष्ट शुभोपयोग उसका कार्य है। उत्कृष्ट शुभोपयोग कारण है और शुद्धोपयोग उसका कार्य है। इसका मतलब हमारे पास शुभोपयोग उत्कृष्ट चाहिए, तभी शुद्धोपयोग होता है, ये सिद्ध हुआ। तो उत्कृष्ट शुद्धोपयोग प्राप्त करने के लिए क्या करें? मुनि बन जाएं। मुनि बनकर के क्या करें? तो वो जो उत्कृष्ट शुभोपयोग है उसको भी त्यागो, छोड़ो। जो प्राप्त किया है वो भी है वहां, उसको छोड़ो। उसको छोड़े बिना वो नहीं होता। इसका छोड़ना ही शुद्ध कार्य है, शुद्धोपयोग का कार्य। छोड़ना ही कार्य है। छोड़ दिया तो कार्य की सिद्धि हो गई। पकड़ के बैठे हैं तो अभी कारण मौजूद है। शुभोपयोग को पकड़ के बैठे हैं तो उत्कृष्ट शुभोपयोग अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, उत्कृष्ट शुभोपयोग अच्छा नहीं लगना चाहिए। ये मुनि को उपदेश दिया, मुनि महाराजों को ये उपदेश है कि शुभोपयोग में ही बैठ गए, अच्छा लग रहा है क्या? पूछते हैं। तो हमको कहना पड़ेगा भगवान से, नहीं नहीं भगवान अच्छा नहीं लग रहा, तो ध्यान में बैठो, शुद्धोपयोग में जाओ, बैठ जाता हूं भगवान, उपदेश देना अच्छा नहीं लगता, टाइम हो गया चला जाता हूं, ठीक जिनवानी बोलो।
ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमु सदा दे तो देव बचो अरिहंत गुरु सेवो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मुक्ति का।